सिद्धेभ्यो ॐ नमः सिद्धेभ्यो ॐ नमः सिद्धेभ्यो ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये संवसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित्तु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्चामि समयपाहुड मिनमो सुदकेवलीभणिदम्। ये समय सार कुंद कुंद आचार्य भगवान का, जिसके कर्ता कर्माधिकार की 91 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। और इस गाथा में तो ये बात बताई जा रही है कि यह जीव जो है वह अपने विकारी परिणामों का स्वयं कर्ता है। अज्ञानी उसका कर्ता हो सकता है कहो तो, यानी यहां तो उसको ही कर्ता बताया है, लेकिन वह परद्रव्य का कर्ता नहीं, यानी कर्म का वह कर्ता नहीं है। ये बात यहाँ विशेष रूप से समझा रहे हैं। कर्म में जो कोई परिणमन हो रहा है वो उसकी अपनी स्वयं की योग्यता से वह हो रही है, जीव ने कराई है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से ये बात चालू हो गई है। जो हमने बीच में अभी 3-4 कलश जो देखे थे उसके मतलब उसको साथ में रखते हुए ये आगे, मतलब एक्चुअली ये लिखे गए पहले, कलश लिखे गए बाद, फिर भी उसका कनेक्शन है। तो देखो हम पृष्ठ क्रमांक 11 पर आए हैं और 11 में हमारा 5वें-6वें लाइन में नया पैराग्राफ चालू होता है, वहां तक हम शुरू करेंगे। अज्ञानी ने व्यवहार हो तो नथी, क्या कहा? आओ आओ भगत जो होती है घर पे आने के बाद तो व्यवहार छे के नहीं, तो यहां तो ना पड़े छे। क्या कहते हैं? अज्ञानी ने व्यवहार हो तो नहीं, ये लौकिक की बात नहीं गत बता रहे, ये तो अध्यात्म की बात है। तो किसके व्यवहार हो सकता है? तो जिसके निश्चय है उसका व्यवहार हो सकता है। अज्ञानी उसी लिए कहा जाता है कि उसने अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का अनुभव नहीं किया है, तो उसके निश्चय है ही नहीं। तो जिसके दूसरे किसी के ऊपर उसका आरोप करके उसको व्यवहार कहा जाए। तो यहां कह रहे अज्ञानी ने व्यवहार हो तो नहीं, अज्ञानी तो व्यवहार मूढ़ कयो छे, अज्ञानी ने तो व्यवहार मूढ़ कयो छे। यहां उसको व्यवहार नहीं लेकिन उसको क्या कहा गया है? तो वह तो व्यवहार मूढ़ है। व्यवहार मूढ़ का अर्थ क्या है? कि जो व्यवहार यानी राग भाव जो है उसी में वह अटका हुआ है, उसी में मोहित हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं ये तो व्यवहार। अज्ञानी ने तो व्यवहार मूढ़ कयो छे। समयसार गाथा 413 3 शब्द कहा छे, ये आगे अभी आने वाली है 310-320 गाथा के बाद। क्या लिखा है उसमें? जो अज्ञानी है उसको 3 शब्दों से संबोधित किया है। कौन से? अनादि रूढ़, व्यवहार मां मूढ़ अने निश्चय पर अनारूढ़, ये 3 नाम है। कल पूछूंगा किसी को भी, क्या भी याद करना है? हाँ देखो देखो किताब में देख के बोलना हो। पहला नंबर किसका दिया है? इसमें 3 विशेषण दिए, इसमें जय भाई नाम बताएंगे, अनादि रूढ़। दूसरा मंदा, व्यवहार मूढ़। तीसरा दिव्याबेन, निश्चय में अनारूढ़। अब मैंने तीनों ही ऐसे व्यक्ति से पूछा कि जो दूसरा कोई नहीं सुन सके मेरे सिवा। इसलिए पूछा कि अभी दूसरे को पूछने को चांस है नहीं, इनको तो किताब में देख के बोलने को बोला तो उन्होंने मन में ही पढ़ लिया या आपने सुना जो भी होगा। तो अभी दूसरा नंबर कौन सा था साहब? हाँ, व्यवहार माँ मूढ़, और तीसरा निश्चय माँ अनारूढ़, बराबर छे। अरे पहला, हाँ बोलो बोलो, अनादि रूढ़, यानी जो अनादि से रूढ़ी चलती आई हुई है खोटी खोटी, उसमें ही जो आरूढ़ हो गया ऐसा। दूसरा कैसा है? व्यवहार माँ मूढ़ है, और तीसरा के निश्चय पर अनारूढ़। अभी तीनों एक साथ बताएंगे सौभाग चंद जी? अनादि रूढ़, व्यवहार माँ मूढ़, हाँ, और तीसरे निश्चय पर अनारूढ़। हाँ, ये तीनों शब्द हैं, वो किसके लिए वापरे हैं? अज्ञानी के लिए, नहीं तो वही भूल जाएंगे, क्योंकि ये हमारा ही वर्णन चल रहा है तो हम अपने पे लगा लेंगे इसलिए। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, अज्ञानी ने व्यवहार होतो नथी, वो भी तो एक वन ऑफ द पार्ट है। नहीं, हाँ ये जो है ना, तो वहां तो अज्ञानी की बात चल रही, उसको भी अज्ञानी कहेंगे हम? ये वीरेश भाई तीन कौन से बताए अभी इन्होंने आपके बगल वालों ने? देखो मत भैया, हाँ व्यवहार में मूड, निश्चय पर अनारूढ़, बहुत अच्छा। देखो ये क्या कह रहे, देखो फिर से, अज्ञानी ने व्यवहार होतो नथी, अज्ञानी ने तो व्यवहार मूड कहो छे। समयसार गाथा 413 मां त्रण शब्द क्या छे? अनादि रूढ़, व्यवहार में मूढ़ अने निश्चय पर अनारूढ़। वर्तता थका परमार्थ सत्य भगवान समय सार ने देखता अनुभवता नथी। तो ये परमार्थ सत्य भगवान समय सार कौन है भाई? ये नया कौन भगवान निकाला? हाँ बेन, हाँ किसके? महावीर का क्या, आदिनाथ का? हाँ वो बोलना चाहिए ना। हाँ तो अज्ञानी इसीलिए है कि उसने अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का, अपने त्रिकाली भगवान समयसार का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वो कैसा है? अनादि रूढ़ है, व्यवहार माँ मूढ़ है, और निश्चय पर अनारूढ़ है। हूँ श्रमण छू, हूँ श्रमणोपासक छू, एटले श्रमणनो उपासक छू, एम द्रव्यलिंग माँ ममकार वड़े मिथ्याहंकार करे छे। ये वहां जो गाथा में बात आने वाली है वही बात यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि इनटू ब्रैकेट इनटू इन्वर्टेड कॉमा है ना, तो वहां की बात यहां समझा रहे हैं। क्या कहें? हूँ श्रमण छू, हूँ श्रमणोपासक छू, एम द्रव्यलिंग मां ममकार वड़े, द्रव्यलिंग में यानी शरीर में ममकार वड़े मिथ्या अहंकार करे छे, ते वो अनादि रूढ़, व्यवहार मां मूढ़, प्रौढ़ विवेक वाला निश्चय पर अनारूढ़ वर्तता थका, परमार्थ सत्य भगवान समय सार ने देखता अनुभवता नथी। अरे भाई, राग नहीं मंदता तो जीव अनादि थी करतो आव्यो छे, एमा काई नवू नथी। सम्यक दर्शन विना कथन मात्र व्यवहार रत्न त्रयनु जीवे अनंतवार पालन करियो छे। नियमसार कलश, ये कितना नंबर है आपके पास? 121 है ना? 121 मां कहियो छे के जे कथन मात्र व्यवहार रत्नत्रय छे तेने भवमा डूबेला जीवे अनंतवार आचर्यू छे। यानी क्या कहना चाहते? जो भव 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 एक के बाद अनेक भव किए हैं, ऐसा जीव भवमा डूबेला जीव, उसने क्या किया है? व्यवहार रत्नत्रय जो है, यानी यहाँ जो सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति जो शुभ भाव है, उनके प्रति जो अहोभाव है, इस तरह का भाव इस जीव ने अनंत बार किया गया है। परंतु अरे रे, ज्ञान स्वरूप जे एक परमात्म तत्व छे एनु आचरण करियो नथी। सम्यक दर्शन विना भेद ज्ञान रहित व्यवहार मा जे लीन छे ते व्यवहार मूड छे। क्या कहा? सम्यक दर्शन बिना, दूसरी बात क्या कही? भेद ज्ञान रहित, और क्या कर रहा है? व्यवहार मा जे लीन छे, यानी शुभ भाव में ही जो अटका हुआ है, ऐसे जीव को व्यवहार मूड कहा है। सम्यक दर्शन प्रकट थता ज्ञानी ने जे व्यवहार आवे छे तेनो ते ज्ञाता थाय छे करता थतो नथी। ये डिफरेंस है। जो मिथ्यादृष्टि है अज्ञानी वह तो स्वयं को करता ही मानता है, लेकिन यहाँ जो सम्यक दर्शन सहित जीव होगा उसके भी ऐसे भाव आएंगे, लेकिन वह उसका कर्ता नहीं बनता है, वह तो उसका ज्ञाता ही है। क्या कहा था 413 ना भावार्थमा स्पष्ट करियो छे के अनादि कारणों परद्रव्यना संयोगथी थयेलो जे व्यवहार तेमा ज जे पुरुषो मूढ़ अर्थात मोहित छे तेवो एम माने छे के आ बाह्य महाव्रतादि भेक याने वेश जे छे भेक छे तेज अमने मोक्ष प्राप्त करावशे। ये क्या कह रहे हैं? देखो देखो, कभी कभी तो ऐसा कहते हैं कि ये जो 28 मूलगुण है ना उसको यहाँ भेक मतलब एक वेश है। अरे ये नग्नता भी एक वेश है ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि सिर्फ नाग्न धारण किया तो मुनि बना है ऐसा नहीं है। 28 मूलगुण केवल पालन किए तो वो साचा मुनिपद नहीं है। तो ऐसे तो इस जीव ने अनेक बार किए हैं। देखो भाई, जो जीव नौवे ग्रहवे तक जैसे उच्च स्थान तक मतलब स्वर्ग में पहुंच सकता है तो उसके परिणाम कितने मंद होने चाहिए। वो 28 मूलगुण तो यथोचित पालन करता है जीव, जब ही तो इतने मिथ्यात्वावस्थे में भी इतने ऊपर जाता है। तो कहना ये है कि यह भी एक प्रकार का वेश ही है, पहराव जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि थर्ड लाइन है, आ बाह्य महाव्रतादि रूप भेख छे तेज हमने मोक्ष प्राप्त करावशे। यानी हमने सब कुछ छोड़ दिया है उसी के कारण हमें मोक्ष होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। परंतु जेनाती वेद ज्ञान थाय छे एवा निश्चय ने तेवो जानता नथी। आवा पुरुषो सत्यार्थ परमात्म रूप शुद्ध ज्ञान में समय सारने और देखता नथी। यानी अपने स्वभाव का वह उनको किंचित भी जानकारी नहीं है। वो कैसा है अपना समय सार, तो कहते सत्यार्थ है यानी सत्य है, क्षति वस्तु छे है, परमात्मा रूप छे, शुद्ध ज्ञानमय छे। ऐसा जो समय सार, समय यानी द्रव्य, उसमें सारभूत ऐसा मेरा स्व आत्मा इन्हें देखतो नथी। आ प्रमाणे अज्ञानीनो व्यवहार निष्फळ छे, निरर्थक छे। ज्यारे ज्ञानी निश्चय पर आरूढ़ छे ते व्यवहार मां मूढ़ नथी, पण व्यवहारना ज्ञाता दृष्टा छे। जेने आत्मज्ञाननी दशा प्रकट अनुभवमां आवी छे तेवा पंचम गुणस्थान वाला अने छठा गुणस्थान वाला ज्ञानी ने शुभ भावना काळमां अशुभ टळे छे, तेथी तेना शुभ राग ने व्यवहार कहेलो छे। आज एक अहमदाबाद से फोन आया था, बिल्कुल 4:45 शाम को। वो कहते हैं कि भाई आपके हमने किताबें बहुत पढ़ी हैं, चारों ही किताबें हमें बहुत पसंद आई हैं, तो हमें ऐसा अभी शास्त्र बताओ कि जिस शास्त्र में क्या तेजलबेन कि जिस शास्त्र में आत्मा का अनुभव कैसा होगा ऐसा लिखा है, कौन से अनुयोग की वो बात होगी। मैंने कहा द्रव्यानुयोग में तो जगह जगह में लिखा है, नहीं ऐसा कोई पुस्तक बताओ। मैंने कहा बहुत सारे हैं, कितने बताएंगे आपको। नहीं नहीं, वो तो आप ऐसा कोई कंडेंस कोई नहीं है। फिर मैंने उनको बोला कि आपको टाइम है क्या, तो बोले हाँ हाँ बोलो बोलो। मैंने कहा ये जो आत्मा का अनुभव जो है वह अनुभव गम्य बात है, वह कोई भी लिख नहीं सकेगा कि ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना। ये विधि जो है वो कोई भी आपको जिनेंद्र भगवान ने भी नहीं बताई है, और जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने भी नहीं बताई है। सिर्फ हमें उस दिशा के ओर संकेत है, दशा तो हमें पलटानी है। देखो वो कम से कम 5:30 तक और आज कभी नहीं तो नहीं, हम 4:45 बजे भोजन करने बैठे थे, अभी एक कोर खाया नहीं, फोन आया 5:30 बजे तो भूखे रहे, वो 1.25 घंटा बात कर रहा बेचारा। देखो लोगों की कैसी धगस है। मैं तो ये कहूंगा कि अंदर से ऐसी उछाल आते हैं इनके कि हम कुछ ना कुछ करें, पर क्या करें अभी। और वो बताता है कि वो दिगंबर जैन नहीं है, मतलब अभी अभी उसने ये शास्त्र पढ़ना चालू किया है, उसको कांजी स्वामी को भी वो नहीं मानता है, बोलो, यानी उसको ज्ञात नहीं है कौन है क्या है। अभी तक उसने कम से कम 50 पुस्तकें तो मांगी है और अभी आज 44 पुस्तकें और मांग ली है, वहां बाहर में रखी, देखो भूल न जाऊं। इसलिए कहने का मतलब लोगों को अंदर से उछाल आता है कि भाई ये बात कहाँ होगी हमें बताओ, पर भाई वो लिखी तो हर जगह है कि सारे दुनिया की तरफ से तेरा दृष्टि या तेरा उपयोग हटा के स्व स्वभाव पर ले जा और वहीं केंद्रित कर, ऐसा ही लिखेंगे और क्या कहेंगे। नहीं केंद्रित करना यानी क्या, के पर के तरफ का उपयोग हटाना यानी क्या, ऐसा लोग पूछते हैं। अभी बताए कौन सी भाषा, सो में स्थिर कर यानी क्या करना। ये बात मैं तो कहता हूं, मुझे भी पहले ऐसी सताती थी जब मैं भी बहुत नव मुसलमान था ना, नहीं समझे, नव मुसलमान यानी जो पहला दीक्षित पहले अभी कन्वर्ट होता है ना, तो दिन में 9 बार नमाज पढ़ता है, फिर बाद में एक दिन में 1 बार, फिर बाद में हफ्ते में 1 बार। वैसा पहले तो अंतरंग में ऐसी इच्छा उठती थी कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है, स्वामी जी को जाके अकेले में मस्का मार के पूछते थे, वो कहे कैम प्रवचन में बिस्ता नहीं साहेब तुम्हारा सामेज बेसुजू ने, उनको कहा फुर्सत है अपने तरफ देखने को, हमें तो लगता है कि मेरे तरफ देख के ही बोल रहे हैं। तो पाने ही बात आवे छे ने, हमें तो कुछ पता ही नहीं लगता था कि ये बात आई है, ऐसी बात है। ये तो पहले तो बहुत उमंग रहती है, फिर बाद में अरे अनादि से नहीं प्राप्त किया है तो अभी कहां से होने वाला है, ये सब थक जाता है, लेकिन पुरुषार्थ तो उठाता नहीं है। क्या लिखा है देखो, आ प्रमाणे अज्ञानी नो व्यवहार निष्फळ छे निरर्थ छे, जारे ज्ञानी निश्चय पर आरूढ़ छे ते व्यवहार में मूड नथी पण व्यवहार ना द्राज ज्ञाता दृढ़, जेने आत्मज्ञान नी दशा प्रकट अनुभव में आवी छे। इस पर से मुझे बात याद आई, हाँ, तेवा पंचम गुणस्थान वाला ने छठा गुणस्थान वाला ज्ञानी ने शुभ भावना काल में अशुभ टळे छे, तेथी तेना शुभराग ने व्यवहार कहेलो छे, हाँ, पण ते व्यवहार काई निश्चय नु वास्तविक साधन नथी, बाह्य निमित्त हो पण ते निश्चय नो करता नथी, ज्यां एने साधन कयूं छे ते उपचार थी कयूं छे एम समझवू, यानी शुभराग को भी परंपरा मोक्ष का कारण जो शास्त्र में ऐसा विदित है तो वह भी उपचार का कथन है, ऐसा आप समझ लो। जड़ अने चेतननी पर्याय थाय ते वक्ते ज्ञानी ने त्या उपस्थिति एटले बाह्य व्याप्ति होय तो ज्ञानी तेमा निमित्त कहेवामां आवे छे, निमित्त करता नहीं, निमित्त अने निमित्त करता मां फेर छे, एटले निमित्त करता है, निमित्त ही कार्य करता है, वह करता हो गया, निमित्त यानी जो निमित्त अनुकूल है जो कुछ नहीं करता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव जे राग द्वेष नो करता थाय छे तेनो राग भोग आदि जे क्रिया थाय तेनो निमित्त करता कहेवामां आवे छे। मिथ्या दृष्टि ने निमित्त करता कहेवामां आवे छे, करता तो नहीं लेकिन वो कहा जाता है। ज्ञानी ने पोताना ज्ञाता दृष्टा स्वभावनु भान थयुं छे, तेने जे राग छे ते ज्ञाननी पर्यायमां निमित्त छे, ज्ञाननी जाणवानी पर्यायनु उपादान ते पर्याय पोते छे, તેમાં રાગ નિમિત્ત છે। જ્ઞાનીને જ્ઞાનની સ્વપર પ્રકાશક પર્યાય પોતાથી થાય છે તે પર્યાયમાં રાગ નિમિત્ત છે, પણ રાગ નિમિત્ત છે માટે ત્યાં જ્ઞાનની પર્યાય થઈ છે એમ નથી। રાગ કરતા થયા સિવાય જ્ઞાન સ્વયં જ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે, એ ક્યાં કહેના ચાહતે હૈ? દેખો દેખો યહાં પર યે બાત બતાતે હૈ કે જો જ્ઞાની હૈ ઉસકો અપને સ્વભાવ કા પતા લગ ગયા, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ હૈ એસા ઉસને જાન લિયા હૈ, તો ક્યા હોતા હૈ? ફિર ભી ઉસકો રાગ ઉત્પન્ન તો હોતા હી હૈ। તો રાગ ઉત્પન્ન હોતા હૈ તો રાગ કો જાનતા તો હૈ વો, ક્યોંકિ જ્ઞાન તો સ્વપર પ્રકાશક હૈ ના, તો ઉસમે ઉઠને વાલા જો રાગ હૈ ઉસકો ભી વો જાનતા હૈ, કોન? જ્ઞાની। અબ યહાં યે સમજાતે હૈ કે વો રાગ ઉઠા इसलिए इस जीव को ज्ञान हुआ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखो दो भिन्न भिन्न गुण है ना, तो दोनों का कार्य साइमल्टेनियसली यानी एक ही समय में हो रहा है। ऐसा नहीं होता है कि पहले राग हुआ और दूसरे समय में उसका ज्ञान हुआ, ख्याल में? ये दोनों एक साथ में होता है। लेकिन ज्ञान कैसा है? स्व को भी जानेगा यानी ज्ञान ज्ञान को भी जानेगा, और पर यानी ज्ञान में उठने वाले जो अनेक मतलब पर्याय हैं पैदा होने वाली उसको भी वो जानेगा। वैसे उस ज्ञान पर्याय की उस रूप योग्यता ही है। तो यहाँ तो ये समझा रहे हैं कि वो जो राग उठा राग उत्पन्न हुआ वो राग का कर्ता, वो राग ज्ञान का कर्ता नहीं, राग के कारण ज्ञान होता है ऐसा नहीं, ज्ञान का परिणमन स्वयं से होता है। देखो देखो यहां क्या कह रहे, देखो फिर से फर्स्ट लाइन से पढ़ रहा हूं मैं। ज्ञानी ने 12 नंबर पेज, ज्ञानी ने પોતાના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવનું ભાન થયું છે, તેને જે રાગ છે તે જ્ઞાનની પર્યાયમાં નિમિત્ત છે। તો રાગ જ્ઞાન की પર્યાય में નિમિત્ત क्यों है? अरे भाई ज्ञान ज्ञान का कार्य कर रहा है, ज्ञान की पर्याय ज्ञान अपना अपने अपनी अपनी हो रही, और उसमें क्या राग भी जानने में आएगा कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं ते ज्ञाननी पर्याय में निमित्त छे, ज्ञाननी जानवानी पर्याय नु उपादान ते पर्याय पोते छे। बात क्लियर हो गई वीरेश भाई? बात समझ में आती है? तेमा राग निमित्त छे, જ્ઞાની ને જ્ઞાનની સ્વપર પ્રકાશક પર્યાય પોતાથી થાય છે। એ જ્ઞાન હિ એસા હૈ કે વો સ્વ કો ભી જાને ઓર પર કો ભી જાને, ઓર રાગ કૈસા હૈ? હા બોલો બોલો બોલો। હા રાગ જો હૈ વો સ્વ કો ભી નહીં જાનતા હૈ પર કો ભી નહીં જાનતા, વો તો અંધા હૈ યાની જ્ઞાન રહિત હૈ, સ્વભાવ મેં નહીં હૈ ના વો। તો ઇસલિયે કહે રહે હૈ કે જ્ઞાની ને જ્ઞાનની સ્વપર પ્રકાશક પર્યાય પોતાથી થાય છે તે પર્યાયમાં રાગ નિમિત્ત છે। અભી યહાં મૂળ બાત બતાને જા રહે હૈ, પણ રાગ નિમિત્ત છે માટે ત્યાં જ્ઞાનની પર્યાય થઈ છે એમ નથી। રાગ કરતા થયા સિવાય યાની વો ક્યાં નિમિત્ત હૈ? જ્ઞાન સ્વયં જ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે, યાની વહાં રાગ ઉસ જ્ઞાનરૂપી પર્યાય કા કરતા નહીં હૈ। જેને શુદ્ધ ચિદાનંદ ચૈતન્યમય પ્રભુ આત્માની દ્રષ્ટિ કરતા સમ્યક દર્શન પ્રકટ થયું છે, આનંદનો સ્વાદ આવ્યો છે, એ જ્ઞાનીને રાગ આવે છે, પણ તે રાગનો જ્ઞાની કરતા નથી। રાગ એ જ્ઞાનીનું કર્તવ્ય નથી, કેમ કે રાગ કરવા લાયક છે એમ તે માનતો નથી, તથાપિ પરિણમન છે એ અપેક્ષાએ તેને કરતા કહેવામાં આવે છે। ઉપચાર છે પ્રવચન સારમાં 47 નયના અધિકારમાં આવે છે કે જેમ રંગરેજ રંગનો કરતા છે તેમ જ્ઞાની પરિણમનની અપેક્ષાએ રાગનો કરતા છે। એને જૈસે એ ઉપચાર છે કહેને મેં આતા હૈ કે રંગરેજ અને રંગારી ના, હા વો જૈસા દીવાલ કો રંગતા હૈ એસા ઉપચાર છે કહેને મેં આતા હૈ, वैसा ये राग का करता है यह भी उपचार से कहने वाले, क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है ना। फिर भी ऐसा एक नहीं की अपेक्षा से ऐसा कहने में
रंगरेजा ने कपड़ा रंगाने वाला हिस्सा लिया होगा। हाँ, शायद
ठीक है, रंगरेजा ने कपड़ा रंगाने वाला। हाँ। तो कहते हैं जेम रंगरेज रंगनो करता छे तेम ज्ञानी परिणमन्य अपेक्षा है, यानी वो परिणमन हो रहा है कहाँ उस जीव के पर्याय में, तो ये अपेक्षा है रागनो करता छे। तो इसका अर्थ ऐसा मत लेना कि करवा लायक छे, पर परिणमन छे ये अपेक्षा है जीव ने रागनो करता कहवाय छे। પોતાની કમજોરીથી જ્ઞાનીને રાગ આવે છે, તે રાગના કાળે જ્ઞાનની સુપરપ્રકાશક પર્યાય પોતાથી પ્રકટ થાય છે। દ્રવ્યનું જ્ઞાન પર્યાયમાં આવે તે સ્વપ્રકાશક અને પરરાગ સંબંધી પોતાનું જ્ઞાન પોતાથી પર્યાયમાં થાય તે પરપ્રકાશક। બરાબર આ ગયા ખ્યાલ મેં? હા, ક્યાં કહેતે હૈ? દેખો દેખો, દ્રવ્યનું જ્ઞાન પર્યાયમાં આવે, યાને અપને ત્રિકાલી સ્વભાવ કા જ્ઞાન પર્યાય મે આવે, વો સ્વપ્રકાશક અને પર કોણ પર? દુનિયાને રાગ એના સંબંધી પોતાનું જ્ઞાન પોતાથી પર્યાયમાં થાય, વો ભી દૂસરે કિસી કે કારણ સે, રાગ કે કારણ સે રાગ કા જ્ઞાન હોતા હૈ એસા નહીં હૈ, તો વહ પર પ્રકાશક હૈ। દેખો, એક હી આત્મા કે ગુણો અનંત ગુણો મેં સ્વપ્ર પ્રકાશક કો ડિવાઈડ કિયા। અભી હમ હમે જાનતે હૈ, દેખો યે પેન્સિલ કો મેને ઇસ પેન્સિલ કો જાના, તો મેને કહેતે હી મેરી બાત આઈ, પેન્સિલ કો કહેને સે યે મેં સ્વ, યે સ્વપ્ર સ્વપ્રકાશક, પેન્સિલ કો જાના વો પર પ્રકાશક, જ્ઞાન દોનો કો જાનતે હૈ, લેકિન વો બાત તો બહોત સ્થૂલ હુઈ। અભી યહાં તો એકદમ ઓર સૂક્ષ્મતા સે કહે રહે હૈ કે જબ યહ જીવ અપને સ્વરૂપ કો જાન રહા થા તો ઉસને સ્વપ્રકાશ સ્વપ્રકાશક હૈ વહ અપને સ્વરૂપ કો જાના, ઓર ઉસ સમય રાગ ઉત્પન્ન હો રહા ઉસકો ભી જાના, તો વો પર પ્રકાશક મેં ડાલ ગયા। થર્ડ લાઇન, ત્યાં રાગ થી જ્ઞાનની સ્વપર પ્રકાશક પર્યાય થઈ છે એમ નથી, સ્વપ્ર પ્રકાશક જ્ઞાનની પર્યાય તો પોતાથી થઈ છે, તેમાં રાગ નિમિત્ત છે। જ્ઞાનની જે પરિણતિ પ્રકટ થઈ તેનો કરતા પોતાનો આત્મા છે, તેમાં રાગ નિમિત્ત છે, નિમિત્ત કરતા નહીં। આવો વિતરાગનો માર્ગ અતિ સૂક્ષ્મ છે। અહીં કહે છે જેમ મંત્ર સાધક પોતાના ધ્યાન ધ્યાનનો કરતા થાય છે અને તે ધ્યાન ભાવ સર્વસાધ્ય ભાવોને અનુકૂળ હોવાથી નિમિત્તભૂત થતા સાધક કરતા થયા સિવાય સર્પાદિકનું વ્યાપેલું છેર સ્વયમેવ ઉતરી જાય છે। એ ક્યાં કહે રહે હૈ? તો ધ્યાન કિસ લે કર રહા હૈ? હા, કે વો સર્પ કા વિષ ઉતર જાય, તો સાધક ભાવ ક્યાં હૈ? સર્પ કા વિષ ઉતર જાય। इतनी बात ख्याल में? अब क्या कह रहे? देखो, जे मंत्र साधक एटले मांत्रिक पोताना ध्यान नो करता थाय छे, एनो ए केम के ई भाव करे छे तो एनो करता ई छे, अने ते ध्यान भाव केवू छे? सर्वसाध्य भावों ने अनुकूल होवाथी। हाँ, अभी उसका जो कोई रिजल्ट आने वाला है उसके लिए उसका वह सर्व मतलब ध्यान करना वह उसके लिए अनुकूल है। हाँ, तो निमित्तभूत थता साधक करता थया सिवाय, याने वह विष का उतरने का जो कार्य हो रहा है उसका करता हुए बिना सर्पादिक नु व्यापेलू झेर स्वयमेव उतरी जाय छे। सर्पादिक याने बिच्छू आदि जो कुछ लेना है ले लो, तेवी रीते आ आत्मा अज्ञान ने लीधे मिथ्या दर्शन आदि भावे पोते ज परिणम तो थको, मिथ्या दर्शन आदि भावनो करता थाय छे अने ते मिथ्या दर्शन आदि भाव उद्गल द्रव्य ने એટલે કર્મરૂપે પ્રણમવામાં અનુકૂળ હોવાથી નિમિત્ત માત્ર થતા આત્મા કરતા થયા સિવાય પુદ્ગલ દ્રવ્ય મોહનીય આદિ કર્મપને સ્વયમેવ પરિણમે છે। યાને જીવ વહા સિર્ફ અપને ખોટે પરિણામ કરેગા, ઓર ઉસકા નિમિત્ત હૈ કિસમે? पुद्गल का जो प्रणमन हो रहा है वो अपने स्वयं से हो रहा है और वह जो भाव है वह उसके लिए निमित्त है, लेकिन कार्य तो पुद्गल का पुद्गल में हो रहा है, जीव उसका कर्ता नहीं है। आत्मा, ये थोड़ा सा आपको सीरियस लग रहा है क्या? आसान है ना, समझ में आता है ना। आत्मा पोतामा जे राग थाई छे तेनु करता छे। अब यहां राग लिया है, मिथ्यात्व ले लो, अज्ञान दशा ले लो, जो भी आपको लेना है। ते समय समीप मा जे कार्मण वर्गणा छे ते स्वयं जड़ कर्म पने परिणमे छे। ते कर्म परिणाम नो राग करता नथी। देखो क्या समझा रहे हैं, समीप मा यानी कहा एक क्षेत्र में रहने वाला, उसको समीप समीप कहा है, यानी ऐसा बाजू में बैठा है वो नहीं। ख्याल में है? ये तो अभी पहले तो ऐसा ही कहते थे, कर्म बाहर से अंदर आके चिपक जाते हैं, जूने कर्म में नवे कर्म चिपक जाते हैं, लेकिन जब जब हमारा विशेष अभ्यास होने लगा तो अपने क्षेत्र में ऐसे अनेक कर्मान वर्गणाएं हैं कि जो अभी अकर्म रूप से विद्यमान है और उन्हीं में से कर्म रूप हो जाते हैं। तो आना जाना तो बोलने की बात है, क्योंकि जब सात तत्व सीखते हैं ना, नए कर्मों का आना रुक जाना, तो खाली बताने की बात है, समझाए कैसा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जड़ कर्म स्वयं जड़ कर्म कर्मपणे परिणमे छे ते कर्म परिणाम नो राग करता नथी। नजीक मा एक क्षेत्रावगा रहेली लिखाई है यहाँ, पुद्गल कर्म वर्गणा जड़ कर्मपणे परिणमे तेनो जो आत्मा कर्त तेनो जो आत्मा करता नथी तो आत्मा परनो मकान आदि नो करता थाय, ए बात प्रभु क्या रही। क्या समझाना चाहते हैं कि जो एक क्षेत्र में रहने वाले ऐसे जो पुद्गल परिणाम परमाणु है उनका यह जीव करता नहीं है, तो गिराक के जेब में जो पैसा है उसको मैं कमा के लाया हूं, ये कहां बात रही है, ऐसा पूछ रहे हैं। क्या कहा, परनो एटले मकान आदिनो करता था इसे। अरे मैं था इसलिए उसको हमने एडमिशन दिलाया, मालूम है परसों अभी जाने दो। यानी ऐसा हम मानते हैं कि पर का परिणमन मैं कर सकता हूं, मैं था इसलिए तुम्हारा काम हुआ, ऐसा। यहां तो कह रहे ना कि परनो एटले मकान आदिनो करता था, ये बात क्या रही, एटले वो तो इम्पॉसिबल है। यहाँ नजदीक में रहने वाला कर्म है उसको भी हम नहीं पलटा सकते हैं, तो बाहर की बातों को क्या। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण एम छ शक्तियों परमाणु आदि छह द्रव्यों में छे। भगवान कहे छे के प्रत्येक द्रव्य में षटकारक रूप शक्तियों पड़ी छे, एश शक्तियों पोता थी पोतानु कार्य करे छे, परने लईने कोई नु कार्य थतु नथी। कोई कहे आ तो एकांत छे, तेने कहे छे सांभळ भाई आ सम्यक एकांत छे, जड़नी पर्याय जड़ती स्वतंत्रपणे थाय छे तेनो करता आत्मा नथी। जेटला प्रमाण में जीव राग द्वेष करे छे तेटला प्रमाण में त्या राग चारित्र मोह कर्म बंधाय छे, छता राग द्वेष ना जे परिणाम थाय छे ते चारित्र मोह ना बंधना करता नथी। आई कहूं छे ने के जीवना मिथ्या दर्शनादि भाव पुद्गल द्रव्य ने कर्म रूपे परिणमवामां अनुकूल होवाथी निमित्त मात्र थता आत्मा तेनो करता थया सिवाय पुद्गल द्रव्य स्वयमेव मोहनी आदि कर्मपने परिणमे छे, मोहनी रूपे कर्मनी पर्याय थाय तेनो आत्मा करता नथी। आत्मा जड़ कर्मनो करता नथी, कर्मनी पर्याय पोताना करता गुणथी पोतानी कर्म परिणतिनो करता थाय छे। क्या कहा, ये जो पर्याय ना कर्म की कर्मरू होने की पर्याय है वह पर्याय ही उसका कर्म के जो पर्याय है, कर्म पर्याय, उसका कर्ता भी वह कर्म पर्याय है और उसका कर्म भी कर्म पर्याय है। यानी समझ में हाँ सब करण मैं तो कर्म और कर्म पर्याय ऐसा अलग अलग बता रहा हूँ, यानी षटकार उसकी है ना। अब आगे भावार्थ, आत्मा तो अज्ञान रूप परिणमे छे, कोई साथे ममत्व करे छे, कोई साथे राग करे छे, कोई साथे द्वेष करे छे, ते भावोनो पोते करता थाय छे। अब यहाँ जो ममत्व करे छे ना, तो ये ममत्व करे छे कौन से गुण की पर्याय है? हाँ सौभाग चंद जी, हाँ बहुत बढ़िया, आपने कहा श्रद्धा गुण की वह विपरीत यानी विभाव पर्याय है। और आगे जो दो बातें हैं वो तो कोई भी बताएगा, अभी अभी तो आसान हो गया, कोई साथे राग करे छे, कोई साथे द्वेष करे छे, तो ये कौन से गुण की पर्याय है? तेजल आप बताएगी? मम्मी जी आप मदद करो, बोलो बोलो। चारित्र गुण की विभाव पर्याय, राग द्वेष है ना, स्वरूप में स्थिरता होगी वह तो स्वभाव पर्याय होगी, स्वभाव पर्याय नहीं तो यहाँ राग द्वेष चालू है। हाँ तो ये पढ़ते पढ़ते हमको थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है तो और उसका गहरा अर्थ हमारे ख्याल में आता है। ऐसे जो भाव है इन भावों का वह स्वयं करता है, कौन? आत्मा, जो अज्ञान रूप परिणाम रहा है ना उसकी बात चल रही है। यहाँ ज्ञानी की बात क्यों नहीं ली? क्योंकि वह अज्ञान रूप परिणाम करता ही नहीं ना, तो उसको हम कैसा कहेंगे वो उसका करता है। और उसके जो कोई राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं उसका वो ज्ञाता है, करता नहीं। आई अज्ञानी बात सूचे छे, सम्यक दृष्टि राग नो करता नथी। नाटक समयसार मा आवे छे ने, शुं आवे छे? करे कर्म सो ई कर तारा, कर्म यानी यहाँ क्रिया यानी यहाँ परिणमन, करे कर्म सो ई कर तारा, सो जाने जो जाने सो जानन हारा। जो करता नहीं जाने सोई, जाने सो करता नहीं होई। क्या कह रहे? देखो देखो ये कहते हैं जो कर्म करता है यानी कोई कार्य करता है तो उसका करता रहा यानी उसका करता है, और जो जानता है वो जानने वाला है, जानन हारा। हम कहते हैं ना ये भगवान हमारे तारणहार है, तो जाननहार यानी जानने वाला, तारने वाला जैसा है। जो करता नहीं जाने सोई, यानी जो परद्रव्यों का करता है ऐसा मानता है वो जानता नहीं है, और जाने सो करता नहीं है, यानी जो अपने आत्मा को जानता है वो पर पदार्थों के कार्य का करता नहीं है। दयादान व्रतादि शुभ भावनों जे करता थाय ते मिथ्या दृष्टि छे, ज्ञानी तो शुभ भावनों जाननहार छे, जाननहारो छे। आत्मा स्वभावे ज्ञाननो कंद प्रभु छे, माटे आत्मा जानवानु काम करे। रागनु काम थाय तेनो ज्ञानी करता नथी। समकीति ने चौथे गुणस्थाने जे राग थाय तेनो ते जाननार छे, करता नथी। आत्मानी शक्तियो सर्व शुद्ध छे, धर्मीनी दृष्टि शुद्ध शक्तिवान चैतन्यगण प्रभु आत्मा ऊपर छे, तेथी जे आ रागादि विकार थाय तेनो ए जाननार छे, करता नथी। तेने रागनो परिणमन छे ए अपेक्षाती करता केवामा आवे छे, परंतु शुद्ध दृष्टिनी अपेक्षाए ज्ञानी रागनो करता नथी। अहो आवु सत्य निरूपण एक दिगंबर माज छे, बीजे क्याय नथी। वेदांत आदि आत्मा ने सर्वव्यापक कहे छे अने भूल ने मायाजाल माने छे, पन एम नथी। मायाजाल पन वस्तु छे अने तेने पोतानी माने ते मूड छे। यानी पर पदार्थ जो है वो माया जाल है ऐसा कहते हैं। और वो जो माया जाल है वह यानी अन्य जो पदार्थ है वो मेरे है यह मिथ्यात्व है ऐसा कहते हैं। आत्मा रागना कर्तापने परिणमे ते अज्ञान भाव छे, ते अज्ञानवश कोई साथे ममत्व मिथ्यात्व नो भाव करे छे, कोई साथे राग करे छे, कोई साथे द्वेष करे छे, ते भावोनो ते स्वयं करता थाय छे। मारी लक्ष्मी, मारू मकान, मारू सोनू, जवेरात, मारो पुत्र, मारी आबरू इत्यादि माने ते ममता छे मिथ्यात्व छे, अने ते बाह्य पदार्थोने देखी तेमने अनुकूल प्रतिकूल जानी तेमा प्रीति अप्रीति करे ते राग द्वेष छे। त्या ए बाह्य चीज राग द्वेष नु कारण नथी, केम के पर चीज तो ज्ञेय छे। यहां क्या बता रहे कि पर वस्तु के कारण से इस जीव के राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। यह जीव ही स्वयं उसको अनुकूल प्रतिकूल मानता है, यह जीव ही किसी को देखकर उसका मैं करता हूं ऐसा सोचता है मानता है। यानी यहां दूसरी भाषा में बात करेंगे, जो पर पदार्थ है वो उसके ज्ञान के ज्ञेय है फिर भी उसका वह कर्ता कर्म संबंध मानता है। यहां लिखा ना केम के पर चीज तो ज्ञेय छे, तेमने अनुकूल प्रतिकूल जानी स्वयं राग द्वेष बने परिणमे छे। वीतराग नो मार्ग सूक्ष्म छे भाई। आत्मा आनंद नो नाथ नित्यानंद प्रभु सहजानंद परमानंद सद। अरे 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 क्या कहा, आत्मा आनंद नो नाथ नित्यानंद प्रभु सहजानंद परमानंद सदानंद स्वरूप छे। क्या बात है, पहले तो आनंद का कहा फिर नित्य आनंद रहने वाला है। आनंद नो नाथ यानी आनंद का स्वामी, ये तो आनंद से परिपूर्ण भरापना है। नित्यानंद प्रभु है, सहज आनंद है वह, कहीं जबरदस्ती लाना पड़े नहीं, उसका स्वभाव ही है। परम आनंद है और सदानंद है यानी त्रिकाल वह आनंद स्वरूप है। एवी पोतानी चीजनी अंतरमा दृष्टि थता अनुभवमां जे अतीन्द्रिय निराकुळ आनंद आव्यो ते आनंद सम्यक दृष्टिना अनुभवनी मोहर छाप छे। क्या कहना चाहते हैं, ये मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि लोग पूछते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, ये हमको कैसा पता लगेगा। ऐसा पूछते हैं लोग। एक व्यक्ति का फोन आया कि भाई साहब मैं कल ऐसा ऐसा सो गया था, उस समय मेरी विचारधारा चल रही थी और उस समय मुझको एकदम ऐसा लगा कि मुझे आत्मा का अनुभव हो गया है। क्या मुझे आत्मा का अनुभव हुआ होगा, वो फोन पे पूछ रहे, तो क्या उत्तर देना है? अरे भाई पहले तो सोए हुए को तो आत्मानुभव होता नहीं, हाँ ये पंचलब्धि पढ़ने के बाद अक्कल आई, लेकिन ये प्रश्न उसके पहले पूछा गया था। क्यों, ख्याल में है ना? तो यहाँ ऐसा कहते हैं कि किसी को आत्मानुभव हुआ है या नहीं वो दूसरे को पूछने की गरज नहीं है, तू स्वयं ही समझ जाएगा। क्यों, कि उस समय तुझे अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा। ए मोहर छाप छे, देखो क्या लिखा, देखो देखो देखो, इफ ऊपर से थर्ड लाइन, एवी पोतानी चीजनी अंतरमा दृष्टि थता अनुभवमा जे अतीन्द्रिय निराकुल आनंद आव्यो। अब वो कैसा दिखेगा किसको आया हुआ, ए आनंद सम्यक दृष्टि ना अनुभवनी मोहर छाप छे, यानी जिसके अनुभव हुआ है वो दूसरे को पूछना नहीं पड़े, साहब मुझको जरा प्लीज बताना मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे लगता है कि आपको अतीन्द्रिय आनंद आया क्या, इधर मैं बैठा हूँ बराबर अपने स्वरूप में एकाग्र हो रहा हूँ, चेहरे पे ऐसा आनंद दिखता है कि नहीं ऐसा? तो कह रहे भाई वो तो अनुभव की बात है, दूसरा कोई देख के थोड़ी बताएगा तुझे। और हमारे गांव में तो सब लोग अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं आनंद सम्यक दृष्टि ना अनुभव नहीं मोर छाप छे, अतीन्द्रिय आनंद ए स्वानुभव नो ट्रेडमार्क छे। मोर छाप यानी क्या? वही मोर छाप यानी ट्रेडमार्क, इंग्लिश में बोले तो जरा अच्छा लगता है। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय आनंद यानी मुझे आत्मानुभव हुआ है कि नहीं, ये कैसा पता लगेगा? तो मुझे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आएगा, निजानंद रस का रसपान होगा। अब जो आप जो ही चाहे जो भाषा में बोलो भाई, हाँ, कि अतीन्द्रिय आनंद के सागर में तुम डूब जाओगे। अरे ऐसा डूबने में बन गए, मेरे को नहीं है, मेरे को तो तरने का बात कैसा बताएंगे? जो कोई पोएटिक बात बतावे तो उसका अर्थ तो समझ लो ना, तो ऐसा समझता है कि वो डूब गया। तो कहते थे कि ट्रेडमार्क से सम्यक दृष्टि आनंदनी दशानु वेदन करे छे, तेने जे राग आवे छे तेने ते जाने छे, पन दृष्टि ना सामर्थ्य नी तेनो ए करता अने भोक्ता थतो नथी। सम्यक दर्शन अलौकिक छे। धर्मी ने शुभ राग आवे छे, पन धर्मी राग ने दुख रूप अने हेय जाने छे। अज्ञानी राग ने पोतानु कर्तव्य ने एनाथी पोताने सुख थवानु माने छे, बेनी मान्यता मा आसमान जमीन नो फेर छे, तेथी अज्ञानी विकारना कर्तापने परिणमे छे, तो ज्ञानी विकारना कर्तापने परिणमता नथी। अहो शू दृष्टि नु महात्म्य। यानी दृष्टि नु महात्म्य यानी जिसके सही श्रद्धा हुई है वह तो उठने वाले राग का ज्ञाता ही बनेगा, उसका कर्ता नहीं बनेगा। तो इसलिए कहते हैं शू दृष्टि नु महात्म्य, यानी जिसकी श्रद्धा सही हो गई है, जिसने अपने स्वरूप का सही क्या कहते ज्ञान करके श्रद्धा की है, तो वह राग का यानी विकारी परिणामों का कर्ता नहीं बनेगा। आई कहूं के साधक मंत्रणों करता छे, पन जे स्त्रियों स्वयमेव विडंबना पामे छे, के जे सर्पनु झेर उतरी जाय छे, इत्यादि ते बधी परद्रव्यनी क्रियानो साधक करता नथी। एम देवगुरु शास्त्रनी श्रद्धानो राग पंचमहाव्रतना परिणाम शास्त्रनु ज्ञान ए बधा निमित्त हो, यानी वो निमित्त तो होंगे, पण ए निमित्त आत्मा ने जे सम्यक दर्शन थाय एना करता नथी। क्या कहा, समझ में आया? इसमें ऐसा लिखा है कि कोई गुरु किसी को सम्यक दर्शन नहीं दे सकता, कोई देव किसी को सम्यक दर्शन नहीं दे सकता, पर निमित्त भले हो। देखो कितना क्लियर लिखा। क्या कहते हैं? देखो थर्ड लाइन ये पैराग्राफ है ना, एम देव गुरु शास्त्रनी श्रद्धानो राग पंचमाव्रतना परिणाम शास्त्रनु ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान भी। तो पूछते ना लोग, हम कौन सा शास्त्र पढ़े तो हमको सम्यक दर्शन होगा? तो शास्त्रनु ज्ञान ए बधा निमित्त हो, हाँ, पन ए निमित्त आत्मा ने जे सम्यक दर्शन थाय एना करता नथी। आज यू पोते सम्यक थाय, पोते सम्यक परिणति करे तो सामा वाला जीव ने निमित्त कहेवामां आवशे। ख्याल में आया? अभी एक एक बातें ऐसी है, आप लोग जरूर कहते होंगे तुम बहुत स्लो जाते हो, बहुत स्लो जाते हो, तो क्या करें, ये ऐसे अंदर की बात एकदम पकड़ में आ जाए तो मजा आता है। ये कहते कि पंच महाव्रतना परिणाम, तो वो तो वहां मानते थे कि नहीं, वो तो महाव्रत पालते तो सातवां ही गुणस्थान होगा। मिथ्या दृष्टि कोई जीव है तो उसके पंचमाव्रत तो यथा योग्य पालता है, तो उसको तो सातवां ही गुणस्थान होगा, ऐसा उनका कहना। अरे जितने अंतरंग में वितराग दशा होगी उसके अनुसार गुणस्थान होगा, शुभ भाव से होता होगा तो फिर अंतरंग में लीनता की क्या गरज है, ख्याल में है ना। ये निमित्त है भले, पर वो जो स्वरूप में स्थिरता जो है, जितनी वितरागता है वह उस अनुसार उसका गुणस्थान पलटेगा, ना कि शुभ भाव के कारण से पलटेगा। बात मानने को तैयार नहीं थे, फिर हमने उनसे चर्चा की तो हाँ भाई जरा सोचना पड़ेगा, बोले जरूर सोचो। ये एक एक पॉइंट है ना इसमें, ये देवगुरु शास्त्रणी श्रद्धा, ये श्रद्धानु राग कहा है वो, ये भी शुभ भाव हुआ। खाली एक शास्त्रणु ज्ञान है, वो ज्ञान की बात लिए, ये पंचमाव्रत ना परिणाम वह भी राग की बात है। ये भले निमित्त है, पंते निमित्त सम्यक दर्शन उनसे नहीं होगा, ये होगा तो अपने स्वयं से, तो उनको निमित्त कहेंगे। जेम निमित्त परनो करता नथी तेम व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय ना करता नथी। राग करता करता वितरागता था एम नथी, इन शॉर्ट ये बताया। आहा जगतना जीवो मा मिथ्या श्रद्धाना शल्य पड़िया छे, ते माने छे के अमे धर्म करिए छे। आई कहे छे जीवना भावो निमित्त मात्र थता उद्गल द्रव्य पोते पोताना भाव थी ज कर्म रूपे परणमे छे, परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र छे, करता तो बन्ने पोत पोताना भावना छे, ए निश्चय छे। अभी 92 नंबर की गाथा देखेंगे। अज्ञानात एव बोलेंगे,
देखो गाथा के ऊपर लिखा है अज्ञानात एव कर्म प्रभवति इति तात्पर्यम आह। यानी अब ऐसा बताएंगे यहाँ कि अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होता है। यहाँ लिखा ना, नीचे लिखा हवे अज्ञान थीज कर्म उत्पन्न थाय छे, एम तात्पर्य कहे छे। हम गाथा पढ़ेंगे। परम पाणम कोवम अपाणम प्रिय परम करिंतोसो अन्नानमो जीवो कम्माणम कारगो होदी परमात्मानम कुर्वन् नात्मानमपि च परम कुर्वन् सः अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति। परने करे निजरूपने निज आत्मने पण पर करे अज्ञानमय जीवो कर्मनो कारक बने।
परने करे निज रूपने निज आत्मने पन पर करे अज्ञानमय ए जीव एवो कर्मनो कारक बने। देखो यहाँ पर ये बात बताना चाहते हैं, दो बात ली है यहाँ पर, एक तो स्व और एक पर। तो यहाँ क्या कहते हैं, परने करे निज रूप, यानि पर वस्तुओं को अपने जैसा बनाए, यानि मैं उसका करता हूँ ऐसा जो माने करे, अने निज आत्मने पन पर करे, यानि जीव पुद्गल का कार्य करे और पुद्गल जीव का कार्य करे, ऐसी मान्यता जिनकी है। हा? तो क्या कहते हैं, पर ने करे निज रूप ने निज आत्म ने पन पर करे, यानी हम दूसरी भाषा में समझना हो तो मैं कर्म को बांधता हूँ और कर्म मुझे सताते हैं, कर्म मुझे तकलीफ देते हैं, संसार में रुलाते हैं, और ये जो है ना नरकायु, उसको मैंने बांधा और वो कर्म मुझे नरक में लेके गए। ऐसा जो मानता है, समझ में आया, कर्म का मैंने कार्य, मैं पर का कार्य कर रहा हूं और पर जो है ना वो मुझे कर्म वो जो नरक ले गया। अरे भाई, तेरी योग्यता के अनुसार तू स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से गया है क्या? कर्म की क्रियावती शक्ति से कर्म आए हो भले, लेकिन कर्म तुझे वहां लेके गया है ये कहना तो व्यवहार है। ख्याल में आए, वो साची बात नहीं है, लेकिन हम तो ऐसा ही मानते हैं कि जैसा बोएगा वैसा पाएगा। तूने खोटा काम किया है तो कर्म तुझे रुलाएंगे। खोटे कर्म बांधे किसने? तूने। रुलाता कौन है? तो वो कर्म, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, पर द्रव्य पहले द्रव्य का कार्य करता है। यहाँ क्या लिखा देखो, पर ने करे निज रूप ने, निज आत्म ने पण पर करे, यानी दोनों अरस परस एक दूसरे का काम करे। अज्ञानमय ए जीव ए वो, यानी ऐसा जो जीव अज्ञानमय हुआ है, कर्मनो कारक बने, यानी वो कर्म का कर्ता बनता है। अभी गाता देखते हैं। परम एटले जे परने आत्मानम ले पोता रूप कुरुन एटले करे छे, च अने आत्मानम अपी पोताने पन परम एटले पर कुरुन एटले करे छे। स ते अज्ञानमय जीव, ते अज्ञानमय जीव कर्मनाम कर्मोनो कारक एटले करता थाय छे, भवती एटले थाय छे। यानी ये ऊपर क्या दिया था, अज्ञान थी ज कर्म उत्पन्न थाय छे, एम तात्पर्य कहे छे। देखो ऐसा मत समझना, अरे ये क्या है, द्रव्यानुयोग में कोई नई बात बताई है? हमने तो ऐसा सुना था कि मोह राग द्वेष के कारण यह जीव कर्म बांधता है, तो यहां थोड़े का अज्ञान, यानी ज्ञान गुण भी कर्म बांधे, तो ज्ञान गुण तो आत्मा का स्वभाव है और वो कर्म को कैसा बांधेगा? ख्याल में है? हाँ, वो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मैं कल बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं कोई गलत बात बताऊं मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी यहां तो मेरे हिसाब से कर्मनो कर्ता थाय छे, अज्ञानी है तो दोनों अपेक्षा लग सकती है। देखेंगे यहां जो विषय होगा, मुझे तो लगता है कि द्रव्य कर्म की बात है, लगता है। चलो कल नक्की होगा, और जो होगा सो उसी को मानना पड़ेगा। देखो थर्ड लाइन यहां लिखिए, देखो जेम शीत उष्ण नो अनुभव करवामा समर्थ एवी शीत उष्ण पुद्गल परिणामनी अवस्था पुद्गल थी अभिन्न बनाने लिदे आत्मा थी सदाय अत्यंत भिन्न छे। तो यहां तो जीव और पुद्गल की बात ली है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, अभी कल हम देखेंगे। ये अभी पढ़ने में भी कोई विशेष दम नहीं है, यहीं रुकते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मा सकण मो सदा देत हो। तेजल